रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।
आज है 24 मार्च दिन बुधवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें रोहित जोशी का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। यूरोप और अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों के जवाब में रूस और चीन ने मिलाया हाथ। विश्व राजनीति में बन रहे नए राजनीतिक समीकरण। खाशोगी हत्या मामले की संयुक्त राष्ट्र की जांचकर्ता को सऊदी अधिकारी ने दो बार दी थी जान से मारने की धमकी। श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ UNHRC ने किया कड़ा प्रस्ताव पारित। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में रोहित जोशी के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के आरोप में यूरोपीय यूनियन समेत पश्चिमी देशों की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन ने अगले ही दिन पलटवार किया है। इधर अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच रूस ने भी चीन से हाथ मिला लिया है। इसी सिलसिले में रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए जाने का आह्वान किया है। दोनों ने प्रतिबंधों से पैदा हुए हालात को बड़ा वैश्विक राजनीतिक उथल पुथल बताते हुए बैठक बुलाने को जरूरी बताया है। वहीं ताजा हालात को ध्यान में रखते हुए चीन उत्तर कोरिया से भी अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में है। इस सब से जुड़े घटनाक्रम का सार बताती एक रिपोर्ट सुने शादाब हसन खान से।
मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन के आरोपों में पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों और आलोचना के बीच चीन और रूस के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को हुई बैठक में एकता दिखाई। दक्षिणी चीन में स्थित नानिंग शहर में सोमवार को हुई पहली बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरेव ने एक संयुक्त बयान में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत कई देशों के उठाए कदमों को अपने अंदरूनी मामलों में बाहरी दखलअंदाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि वे जलवायु परिवर्तन से लेकर कोरोना वायरस महामारी तक के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से ईरान परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने का आग्रह किया। गौरतलब है कि रूस और चीन के तेहरान से नजदीकी संबंध हैं। वांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की तरफ से चीनी अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की। चीन के शिनजियांग प्रांत में कथित तौर पर वीगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन के आरोपों में इन देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, जिसकी वांग ने आलोचना की है। उन्होंने कहा, एक पक्षीय प्रतिबंधों के खिलाफ सभी देशों को साथ खड़ा होना चाहिए। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य नहीं है। वहीं वाशिंगटन और बीजिंग के बीच तल्ख होते रिश्तों और प्योंगयांग के कूटनीतिक तौर पर अलग थलग पड़ने, वहां वित्तीय समस्याओं की वजह से चीन पर बढ़ती उसकी निर्भरता के बीच चीन और उत्तरी कोरिया के नेता अपने पुराने संबंधों को और पुख्ता करने की दिशा में संवाद कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA ने मंगलवार को कहा कि किम जोंग उन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत में विरोधी ताकतों के कारण पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने की वकालत की है। KCNA और चीन की शिनहुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक शी ने किम को दिए संदेश में द्विपक्षीय संबंधों को दोनों देशों के लिए कीमती संपदा करार दिया और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थायित्व के प्रति योगदान का संकल्प लिया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से निपटने के लिए अपने एशियाई सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर दिए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि चीन जल्दी ही उत्तर कोरिया को खाद्य सामग्री से लेकर दूसरी और मदद दे सकता है, जो महामारी के दौरान सीमाओं के बंद होने से रुक गई थी।
रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं, और मैं हूं रोहित जोशी। अब रुख अगली खबर का। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्डियन ने अपनी एक खबर में कहा है कि सऊदी के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के मामले की संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांचकर्ता एग्निस कैलामार्ड को एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने दो बार जान से मारने की धमकी दी थी। गार्डियन के साथ एक साक्षात्कार में एग्निस कैलामार्ड ने कहा है कि पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर जांच के दौरान 2020 में संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने दो बार धमकी देते हुए कहा था कि अगर कैलामार्ड पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वह उन्हें देख लेगा। जब कैलामार्ड से पूछा गया कि इस टिप्पणी को जेनेवा में बेस्ड उनके सहयोगियों ने कैसे समझा तो उनका कहना था, यह एक जान से मारने की धमकी थी, इसे ऐसे ही समझा जा सकता था। कैलामार्ड एक फ्रांसीसी नागरिक और मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं जो इस महीने एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल बनने वाली हैं। वह 2018 में इस्तांबुल में हुई पत्रकार खाशोगी की हत्या के मामले की पहली जांचकर्ता थी। उन्होंने 2019 में प्रकाशित हुई अपनी 100 पन्नों की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि इस बात के विश्वसनीय प्रमाण मौजूद हैं कि सऊदी के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और अन्य वरिष्ठ सऊदी अधिकारी सऊदी सरकार के तीखे आलोचक वॉशिंगटन पोस्ट से जुड़े पत्रकार खाशोगी की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। साथ ही इस रिपोर्ट में इस हत्या को अंतर्राष्ट्रीय अपराध कहा गया था। अगली खबर श्रीलंका से जुड़ी है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने मंगलवार को श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया है जिसे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजपक्षे ने इस प्रस्ताव पर मतदान से पहले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए काफी प्रयास किए थे। प्रस्ताव पर मतदान से पहले गोटाबाया और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने विश्व के कई मुस्लिम नेताओं को फोन किए थे। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र निकाय को लिट्टे के खिलाफ गृह युद्ध में श्रीलंका की तत्कालीन सरकार की तरफ से किए गए अपराधों के संबंध में सबूत जुटाने को अधिकृत करता है। UNHRC ने प्रमोशन ऑफ रिकंसिलियंस अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका शीर्षक वाला प्रस्ताव पारित किया। इसे लेकर UNHRC के 46वें सत्र के दौरान प्रस्ताव के समर्थन में 47 में से 22 सदस्यों ने मतदान किया जबकि 11 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। गौरतलब है कि भारत और जापान उन 14 देशों में शामिल थे जो मतदान में शामिल नहीं हुए। वहीं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और रूस समेत 11 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। श्रीलंका के राजदूत MCA चंद्रप्रमा ने इस ड्राफ्ट प्रस्ताव को अवांछित, अनुचित और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रासंगिक अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को विभाजनकारी बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे श्रीलंकाई समाज में ध्रुवीकरण होगा और आर्थिक विकास, शांति और सौहार्द प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय में श्रीलंका के खिलाफ इससे पहले भी 3 बार प्रस्ताव पारित हुए हैं जब गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई और वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे 2012 और 2014 के बीच देश के राष्ट्रपति थे। प्रस्ताव में श्रीलंका सरकार से आह्वान किया गया है कि वह युद्ध के दौरान कथित मानवाधिकारों के उल्लंघनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के गंभीर उल्लंघनों से संबंधित सभी कथित आरोपों की पूरी तरह से और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे और अगर जरूरत हो तो मुकदमा चलाए। इधर लीबिया के पूर्वी हिस्से के प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर नए एग्जीक्यूटिव को सत्ता सौंप दी है जिसका मकसद युद्ध से बढ़ चुके इस देश का एकीकरण करना है और इस साल के आखिर तक देश में चुनाव करवाना है। मंगलवार को लीबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बेनगाजी में यह सत्ता हस्तांतरण हुआ जो कि अब तक पूर्वी प्रशासन का हिस्सा था। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी यानी GNU को संयुक्त राष्ट्र की ओर से समर्थन वाली एक प्रक्रिया के जरिए बनाया गया है। यह उत्तरी अफ्रीका के इस देश में दशकों से जारी उथल पुथल को खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताजा पहल है। त्रिपोली से सत्ता चला रही गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड और उसके समानांतर पूर्वी इलाके में सत्ता में काबिज साइरेनाई का इलाके से शासन कर रही सरकार, दोनों की जगह अब अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा के नेतृत्व वाली GNU सरकार में आएगी। इस अंतरिम सरकार को इस साल के आखिर तक देश में चुनाव कराकर एक सर्वसम्मत सरकार का गठन करना है। इस बीच अमेरिका के कोलोराडो के बोल्डर स्थित एक सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी की घटना में 10 लोगों की हत्या के आरोप में एक 21 साल के युवक को हिरासत में लिया गया है। बोल्डर के पुलिस प्रमुख मारिस हेराल्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो कि 2010 से बोल्डर पुलिस महकमे में शामिल थे। हिराल्ड ने बताया है कि हिरासत में लिए गए संदिग्ध व्यक्ति का भी इलाज चल रहा है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना पर शोक जाहिर करते हुए कहा है कि बंदूकों को लेकर अमेरिका में कड़े नियामक कानून लाने की जरूरत है। अब चलते चलते एक और खबर पर नजर। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या शिविर में भीषण आग लगने की घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार की देर रात लगी आग में हजारों झुग्गियां जलकर नष्ट हो गई। इन झुग्गियों में 45,000 से अधिक लोग रह रहे थे। बचाव कर्मियों ने मंगलवार को 15 शव बरामद किए। आग में घायल हुए सैकड़ों लोगों का आसपास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रवक्ता जोहानिस वान देर क्लाउ ने कहा, हमने अब तक 15 लोगों की मौत पुष्ट की है जबकि 400 लोग अब तक लापता हैं और करीब 10,000 झुग्गियां नष्ट हो गई हैं। हालांकि बांग्लादेश के अधिकारियों ने अब तक मृतकों की संख्या की कोई पुष्टि नहीं की है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 11 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी हैं जो कि पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य कार्रवाई के बाद पलायन कराए थे। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।